समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम परिक्रमा में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम जानेंगे देश विदेश के समाचार, क्षेत्रीय संवाददाताओं से रूबरू होंगे, इसके अलावा आर्थिक जगत और व्यापार जगत की हलचल भी जानेंगे। बहुत कुछ रहेगा आधे घंटे के इस कार्यक्रम में। आज मैं हूं इस अंक में प्रियंका अरोड़ा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अनुजा कुमार।
नमस्कार एंड हेलो प्रियंका। And Priyanka, today is 15th of April, which is commemorated as Himachal Day, a day celebrating the establishment of Himachal Pradesh as an independent province in 1948. The people of Himachal Pradesh take great pride in celebrating this day every year.
बिल्कुल, और गर्मियों में आप हिमाचल प्रदेश हमें आज ले गई हैं, जब 37 से 40 डिग्री का टेम्परेचर है, ऐसे में आपने हिमाचल की याद दिला दी, तो ऐसा लगता है कि जब छुट्टियां आ रही है ना, तो इसमें हिमाचल की जरूरत है।
Absolutely, you have just taken the words out of my mouth. I was about to say that this is the right season to beat the heat of Delhi and make a visit to the state of Himachal Pradesh, which is also known as the Apple State of India, and it is a major producer of apples and is famous for its delicious varieties. तो वो भी enjoy कर लेंगे हम लोग। On this happy note, let's begin our fresh new episode of Parikrama with all that's in the news making headlines today. So to begin with, star campaigners of many political parties canvass in favour of their candidates for Lok Sabha elections.
Lok Sabha चुनाव से पहले प्रवर्तन एजेंसियों ने रिकॉर्ड 4,650 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी बरामद की।
Vice President Jagdeep Dhankar highlights role of artificial intelligence and advanced analytics in improvement of tax governance.
सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए उज्बेकिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना।
And in IPL cricket, Royal Challengers Bengaluru to clash with Sunrisers Hyderabad at M. Chinnaswamy Stadium in Bengaluru this evening. And Priyanka, it's now time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at national or global level. And today we will talk about World Art Day.
बिल्कुल, हृदय की गहराइयों से या सच्चे मन से मानवीय भावनाओं को व्यक्त करने के लिए की गई सुंदर प्रस्तुति को ही कला कहते हैं। अनुजा, मुझे लगता है कि कला एक ऐसा क्षेत्र है जिसका कोई न कोई रूप हर व्यक्ति को अच्छा लगता है, चाहे वो संगीत हो, कलाकृति का शौक हो किसी को या नृत्य का। तो विच फॉर्म ऑफ आर्ट डू यू लाइक अनुजा?
आई लाइक ऑल द फॉर्म्स। इनफैक्ट इट कैन बी पेंटिंग, इट कैन बी डांस, इट कैन बी म्यूजिक। आर्ट हैज मेनी फॉर्म्स एंड आर्ट हैज ऑलवेज बीन अ पावरफुल मीडियम फॉर शेयरिंग नॉलेज, स्पार्किंग कॉन्वर्सेशन एंड प्रमोटिंग आर्टिस्टिक फ्रीडम। इंटरेस्टिंगली, द डेट कोइंसाइड्स, द 15th ऑफ अप्रैल कोइंसाइड्स विद द बर्थडे ऑफ द लेजेंडरी आर्टिस्ट लियोनार्डो Da Vinci, and of course it reminds me of that art nurtures creativity, innovation and cultural diversity as well for all people across the globe and plays an important role in sharing the knowledge and encouraging curiosity and dialogue. These are qualities that art has always had and will always have if we continue to support environments where artists and artistic freedom are promoted and protected. So this day, as it marks the birthday of the famous artist, we celebrate it as World Art Day.
बिल्कुल, आपने सही कहा। कला जो है विभिन्न संस्कृतियों और समुदायों के बीच सेतु का काम करती हैं, जिससे एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। और आज विश्व कला दिवस इटली के महान कलाकार लियोनार्डो दा विंची को समर्पित है। वे चित्रकारी, मूर्तिकला, वास्तुशिल्प, संगीत और कुशल यांत्रिकी में पारंगत थे। इसी वजह से दुनिया भर में उन्हें सम्मान मिला और आज उनकी जयंती पर विश्व कला दिवस का आयोजन किया जाता है। देखा जाए तो कला हमेशा से ही अभिव्यक्ति और भावनाओं को तलाशने का एक शक्तिशाली माध्यम रहा है, और हृदय की गहराइयों से निकली अनुभूति जब कला का रूप लेती है तो कलाकार का अंतर्मन मानो मूर्त ले उठता है, चाहे लेखनी उसका माध्यम हो या रंगों से भीगी तोलिका या सुरों की पुकार या वाद्यों की झनकार। कला की आत्मिक शक्ति जो है वो शांति का माध्यम है। ये कठिन तपस्या है, साधना है, और इसी के माध्यम से कलाकार सुनहरी और इंद्रधनुषी आत्मा से स्वप्निल विचारों को साकार रूप देता है।
Yes, Priyanka, and the theme for World Art Day this year is the Garden of Expression, Cultivating Community Through Art, which invites us to explore how art brings communities together, nurturing a shared sense of identity and mutual understanding. This theme highlights the transformative power of art in fostering community bonds through shared experiences and expressions. So do you have any idea of the importance of this World Art Day, Priyanka?
जी, जैसे मैंने आपको बताया कि लोगों के बीच जो कह सकते हैं कि रचनात्मक गतिविधियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसका आयोजन किया जाता है और एक तरह से ये सेतु का काम करता है सभी के बीच.
एब्सोल्युटली, बाय डूइंग सो वर्ल्ड आर्ट डे इनकरेजेस ब्रॉडर पार्टिसिपेशन इन द आर्ट्स एंड हाईलाइट्स द नीड फॉर आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन इन पर्सनल एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट. आर्ट होल्ड्स अ स्पेशल प्लेस इन कल्चर एज इट इज अ पावरफुल वे ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड इमॉर्टलाइजिंग द ब्यूटी ऑफ द पास्ट. World Art Day also honors the efforts of artists who fill colors to our lives and shape our cultural identity. Priyanka, we are talking about World Art Day again and again. Can you tell our listeners what is art in simple terms?
जी हाँ, जैसा कि हम शुरुआत में ही कह चुके हैं कि ये एक तरह से अपनी अभिव्यक्ति को उजागर करने का तरीका है और बहुत ही आसानी से जिसे कर सकते हैं. कला मात्र सौंदर्य शास्त्र से परे है, ये मानवीय रचनात्मकता का प्रतीक है और एक तरह से अपनी आपका एहसास है, जो आपके जज्बात है, उसको बयां करने का एक माध्यम है.
Yes, and of course, when we talk about art, it has different art forms. Like often the first form that brings to our mind is when one mentions art is the painting has always been a profound medium for expression. And there is also art of words. Literature encompasses poetry, essays, plays and more. This is also a world of art.
जी हाँ, जैसे वास्तुकला होती है और इसमें आप वास्तुकला के बारे में, जैसे हम इसको आर्किटेक्चर कहते हैं, इसमें घरों, इमारतों इत्यादि को बनाने का काम होता है. इसके अलावा मूर्ति कला होती है जिसमें मिट्टी, हथौड़ा या छोटे औजार, इन सब का इस्तेमाल होता है. चित्र कला होती है अगर हम पेंसिल, पेपर और अलग अलग जो रंग हैं, ब्रश लें, उसके जरिए हम अपनी जो मन के भाव हैं उसको कैनवस पर उजागर करते हैं. काव्य कला, पोइट्री है जिसमें शब्दों का महत्व है और किसी भौतिक वस्तु की नहीं, जैसे कि और कलाओं के बारे में है, शब्द हमारे दिल के सबसे नजदीक होते हैं और साहित्य में शब्द जब हमारे कानों में पड़ते हैं तो हमारा अंतर्मन, हमारी चेतना शब्दों के अलग अलग भावों को समझने का प्रयास करता है.
इनफैक्ट, अ रिलेटिवली रीसेंट एंट्रेंट इज सिनेमा, विच इज अ मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंस. बाय वीविंग टुगेदर विजुअल्स, साउंड एंड नैरेटिव्स, फिल्म मेकर्स क्रिएट मैजिक ऑन स्क्रीन. एंड द लास्ट फॉर्म वी कैन से इज थिएटर, a harmonious blend of visuals and dramatic performance that captivates audiences since ancient Greece times.
और संगीत को हम कैसे भुला सकते हैं अनुजा, इसमें मात्र आ ओ के आलाप, तान द्वारा ही बिना अर्थों को समझकर मन तृप्त और संतुष्ट होने लगता है.
And in many cultures, art is used in rituals, performances and dances as a decoration or symbol. While these often have no specific utilitarian purpose, anthropologists know that they often serve as a purpose at the level of meaning within a particular culture.
बिल्कुल, जो कला है वो व्यक्ति के मन में जो बसी है वो स्वार्थ, परिवार, क्षेत्र, धर्म, भाषा और जाति आदि की सीमाओं ही मिटाकर एक विस्तृत और व्यापकता प्रदान करती है. व्यक्ति के मन को उदात्त बनाती है, वह व्यक्ति को स्व से निकालकर वसुधैव कुटुम्बकम से जोड़ती है.
So of course this day provides an opportunity to reflect on the importance of art and its impact on society. It also recognizes the contributions of artists and their significant role in shaping our culture. It has been rightly said, art is a way of recognizing oneself.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से रूबरू होने का.
Right, and let's talk about the Amarnath Yatra. The Sri Amarnath Shrine Board has announced the schedule for the annual pilgrimage to the revered Amarnath Ji Shrine in the South Kashmir Himalayas. The 52 days, a day long annual pilgrimage to the 3,880 meter high Holy Cave Shrine will commence on 29th of June and conclude on August 19th. Registration for the Yatra has started through 512 designated bank branches across the country today. The pilgrims are advised to adhere to the registration process and the guidelines outlined by the Shrine Board to ensure a smooth and hassle-free pilgrimage experience.
The Amarnath Yatra, an annual Hindu pilgrimage to the Amarnath Cave, located at Lidar Valley in District Anantnag, surrounded by glaciers and snowy mountains and remains covered by snow throughout the year. Amarnath Yatra is one of the most toughest and challenging journey for the devotees. The pilgrimage is believed to be abode of Lord Shiva. Every year, thousands of devotees visit the Amarnath Cave to seek the blessings from the Divine. The annual pilgrimage to Shri Amarnath Temple takes place in the month of Shravan and starts from Pahalgam and Baltal on specific dates. The Yatra of 2024 will start on its scheduled dates, and the devotees can fill the Amarnath Yatra registration form and Amarnath Yatra 2024 medical form online at Amarnath Yatra official website. The pilgrims are required to complete the registration process through designated bank branches using biometric eKYC authentication in real time. The registration is conducted on a first-come, first-served basis, and the registration fee for the Yatra is ₹150 per person. Registered passengers are then required to collect the radio frequency identification RFID card from designated centers in Jammu and Kashmir divisions before commencing the journey. No passenger will be allowed to cross the entry control gate at Dubail and Chandanwari without a valid RFID card. To ensure a safe and seamless pilgrimage experience, pilgrims are advised to obtain a medical certificate from an authorized hospital doctor in his or her state and upload it PDF format during registration with the size limit of 1 MB. The pilgrims must be aged between 13 to 70 years. Individual younger or older will not be allowed to undertake the pilgrimage. Pregnant women beyond 6 weeks of pregnancy are also not permitted to undertake the pilgrimage. The pilgrims are advised to carry the original photo ID and medical certificate while traveling to ensure compliance with registration requirements. This is N. Gulshan Raina for Parikrama from RNU Akashwani Jammu.
और श्रोताओं, हिमाचल दिवस आज मनाया जा रहा है और इसके बारे में हम आपको शुरुआत में ही बता चुकी हैं। आपको ये भी बता देते हैं कि हिमाचल प्रदेश का शाब्दिक अर्थ क्या है। इसका मतलब है बर्फीले पहाड़ों का प्रांत, इसे देवभूमि भी कहा जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य, सहज जनजीवन और सांस्कृतिक वैभव की भूमि है हिमाचल प्रदेश। आइए इसके बारे में और विस्तृत जानकारी लेते हैं अपने संवाददाता रितेश से।
हिमाचल प्रदेश आज अपना 77वां स्थापना दिवस मना रहा है। आज ही के दिन वर्ष 1948 में छोटी बड़ी 30 रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। इस मौके पर आज राज्य स्तरीय समारोह शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पे हुआ, जहां राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने विभिन्न टुकड़ियों द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट की सलामी ली और परेड का निरीक्षण किया। अपने संबोधन में राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को हिमाचल दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि पिछले 76 वर्षों में प्रदेश ने सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय विकास किया है। उन्होंने कहा कि इस पहाड़ी प्रदेश ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं और अन्य राज्यों के लिए विकास का आदर्श बनकर उभरा है। शिव प्रताप शुक्ल ने प्रदेश में हुए विकास का श्रेय यहां के ईमानदार, कर्मठ और प्रगतिशील लोगों को दिया। बर्फ से ढकी यानी हिम आच्छादित पहाड़ियों से घिरे इस समूचे क्षेत्र की खूबसूरती को देखते हुए इस प्रदेश का नाम हिमाचल प्रदेश रखा गया। वर्तमान में इस पहाड़ी प्रदेश का क्षेत्रफल 55,673 वर्ग किलोमीटर है। प्रदेश में कुल 12 जिले हैं और प्रदेश की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 68,64,602 है, जिसमें 34,81,873 पुरुष जबकि 33,82,729 महिलाएं शामिल हैं। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-2024 के अनुसार प्रदेश की आर्थिक विकास दर 7.1% रहने का अनुमान है, जबकि 2022-23 में ये 6.9% रही। आज हुए राज्य स्तरीय समारोह में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आगामी चुनावों में मतदाताओं से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील भी की। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, राज्य सरकार के कई मंत्री और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिनमें कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी, सिरमौर और अन्य जिलों से आए कलाकारों ने शानदार प्रस्तुतियां देकर लोगों का खूब मनोरंजन किया। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी शिमला से मैं रितेश कपूर।
And Priyanka, we all know that the Indian Space Research Organization has developed many critical technologies for different missions. And right now it is working on Gaganyaan mission to demonstrate human space flight capability by launching 3 astronauts to an orbit of 400 kilometers around Earth for a 3-day mission and bringing them safely to Earth. Dr. B.R. Guru Prasad, a former ISRO scientist and presently working as the director of Jawaharlal Nehru Planetarium in Bengaluru, has spoken exclusively to Akashwani News on the importance of Gaganyaan mission in making India the fourth country in the world to master the technology to launch human-rated launch vehicle involving a module with crew safety, life support system, crew emergency escape provision, and also crew management aspects.
Gaganyaan program, you know, the Gaganyaan intends to launch three human space travelers onboard LVM-3 rocket. The spacecraft is called Gaganyaan. LVM-3 rocket will launch Gaganyaan into an orbit which is 400 kilometers high. Around the Earth, it will circle. The spacecraft will make a retro burn, that is, it will reduce its speed using rocket engines, and it will re-enter the Earth's atmosphere, and it's a very dangerous phase, but at the same time, technologies have already been developed by India for this kind of re-entry through SRE-1, through CARE, and was in 2007 and CARE in 2014. And with the help of these kind of technologies, the spacecraft, Gaganyaan spacecraft, can very safely re-enter the Earth's atmosphere, reduce its speed, tolerate the intense heat that gets generated due to friction, and ultimately it can land in the Indian territorial waters with the help of parachutes. So all these technologies are very, very challenging, and India has decided, it has taken up this, and it is and through its perseverance and proceeding in a systematic way, I think it should be able to do it to its satisfaction.
And Priyanka, as always, in view of the upcoming Lok Sabha election, we present you a capsule based on state profiles, giving details of a number of phrases, date of polling, number of seats, and other relevant facts by our correspondents. And in this series, we are first taking our listeners to...
जी हाँ, बिहार की किशनगंज सीट के बारे में बात करते हैं. इस संसदीय सीट पर लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा. अल्पसंख्यक बहुल किशनगंज सीट के साथ पूर्णिया, भागलपुर, बांका और कटिहार सीटों के लिए भी मतदान होना है. भौगोलिक स्थिति के कारण किशनगंज को पूर्वोत्तर का गेटवे भी कहा जाता है. इस सीट के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता धर्मेंद्र राय.
सीमांचल बिहार के किशनगंज क्षेत्र में 2019 के लोकसभा चुनाव की तरह इस बार भी कड़ा चुनावी मुकाबला होने के आसार हैं. 16 लाख से अधिक मतदाता इस बार 12 प्रत्याशियों की चुनावी किस्मत का फैसला करेंगे. कांग्रेस के मौजूदा सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद, जदयू के मुजाहिद आलम और AIMIM के अख्तरुल ईमान मुख्य प्रत्याशी हैं. अमौर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं. किशनगंज का संसदीय इतिहास देखें तो पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री मोहम्मद तस्लीमुद्दीन ने इस लोकसभा सीट का 3 बार, जबकि भाजपा के वरिष्ठ नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने 1999 में 1 बार प्रतिनिधित्व किया है. इस संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बहादुरगंज, कोचाधामन, ठाकुरगंज, अमौर और बायसी विकास के पायदान पर अत्यंत पिछड़े और गरीबी वाले क्षेत्र हैं. विकास का अभाव, बुनियादी ढांचा की कमी और हर साल आने वाली बाढ़ की तबाही इस संसदीय क्षेत्र के प्रमुख चुनावी मुद्दे हैं. धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना.
एंड नेक्स्ट इन कवरिंग प्रोफाइल्स ऑफ की कंस्टिट्यूएंसीज अक्रॉस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ड्यूरिंग दिस अपकमिंग लोकसभा इलेक्शंस, वी ब्रिंग यू अ रिपोर्ट ऑन तूतुकुड़ी लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी ऑफ तमिलनाडु. वी हैव मोर फ्रॉम आवर कॉरेस्पॉन्डेंट.
Thoothukudi constituency was established on 2009. Kanimuri Karunanidhi was elected from this constituency in 2019 with more than 56% votes against Tamilisai Soundararajan of the BJP, who secured more than 21% votes. Kanimuri is seeking re-election for the second time here. The total electorate is 14,48,159 voters. Sivasami Velamani from AIADMK and Vijay Seelan from Tamil Manila Congress, an ally of the BJP, is contesting for the first time here. The VOC Chidambaram or the Kappalottiya Tamilan Port is a state-of-the-art satellite port in the southern part of the state in Tuticore. Freedom fighters like V.O. Chidambaranar, Veerapandiya Kattaboman, the king of Panjalam Kuruchi, Ettayapuram, the birthplace of poet Subramanya Bharati, is in Thoothukudi. The pearl city is known for pearl collection known as Muthukuliyal. In a traditional way, the salt fields, value-added fishing are all sources of revenue here. It is said that Korkai near Tuticore port is mentioned in Greek astronomer Claudius Ptolemy's geography as a center for pearl fishing. Joy, Akashwani, Chennai.
And now it's time to take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
Ram Singh Thakuri, who died on the 15th of April 2002. He's also the composer of the INA anthem, Qaumi Tarana, which continues to instill the sense of patriotism among Indians through decades.
Kadam kadam badhaira, khushi ke geet gaaye ja, ye zindagi hai qaum ki, tu qaum pe lutaaye ja. Tu tere hind aage badh, marne se phir bhi tu na dak, uda ke dushmanon ka sar, jo se watan badhaye ja.
Ram Singh was born near Dharamshala, Himachal Pradesh on 15th of August 1914. He was inspired by his maternal grandfather, Nathu Chand, to learn music. After joining the British Army in 1927, he got training from renowned British musician Hatson and Danish and brass band, string band and dance band.
During the Second World War, Ram Singh was posted to Singapore. After the defeat of the British forces in Singapore, he was taken in as a prisoner of war in 1942. Ram Singh joined the Indian National Army under the leadership of Subhash Chandra Bose.
When Bose came to know about Ram Singh's musical talent, he asked Ram Singh to compose tunes that would inspire the spirit of patriotism. Bose said to him,
"The song should have such an indelible impact and force that the Cathay building should break into two parts and the sky should become visible."
The army man and musician Ram Singh wrote lyrics and composed the famous song Kadam Kadam Badhaye Ja.
Teri himmat bati rahe, khuda teri dhunda rahe, jo tamne tere kade, tu khaak mein milaye ja. Kadam.
After the end of the war, Singh was brought back to India with his fellow soldiers and imprisoned at the Kabul lines of the Delhi cantonment. Mahatma Gandhi and Sardar Vallabhbhai Patel came to meet the INA soldiers. During the meeting, General Bhosle of the INA made a plea to Sardar Patel that the INA soldiers wanted to play the Qaumi Tarana. Bapuji sought permission from the English Army General, who readily gave it.
When Prime Minister Jawaharlal Nehru unfurled the national flag on the ramparts of the Red Fort and addressed the nation on 15th of August 1947, Captain Ram Singh was especially invited to play the tune of Qaumi Tarana of the INA along with the members of his orchestra group.
Captain Thakuri united all the Indians to the sound of his patriotic music. His spirit is still alive in our hearts through his songs of valor, which resonate across the country even today. We salute the great nationalist.
We also remember freedom fighter Kisan Bandhu Bhosle, who was born on 15th of April 1910 in district Satara, Maharashtra. He was inspired by Mahatma Gandhi and at Bapu's call for do or die during the Quit India movement in 1942, Bhosle jumped into the freedom struggle. On 9th of September 1942, he joined a demonstration of more than 2,000 under the leadership of freedom fighter Parashuram Gharge at Satara.
The marchers were stopped by the police officials and, on refusal to disperse, they were fired upon. The firing resulted in the death of 9 persons and Bhosle was one among them. We salute the great martyr. We also remember martyr Karam Singh, who took part in the First War of Indian Independence. He was arrested by the British and charged with mutiny. Karam Singh was sentenced to death and executed on the 15th of April 1858. we salute the great son of the soil.
Time now for the business news of the day. Domestic benchmark indices, the Sensex and the Nifty, fell over 1% as ongoing tensions in West Asia kept investors' risk appetite subdued. At close, BSE Sensex was down 845 points or 1.14% at 73,399, and the Nifty was down 247 points or 1.1% to settle at 22,272.
और क्रिकेट की बात करें तो आईपीएल क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मैच बेंगलुरु में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा।
एंड नाउ कमिंग टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ पेइंग ट्रिब्यूट्स टू सम ग्रेट पर्सनालिटीज, वी बिगिन विद डॉक्टर शंभूनाथ डे, हुज मोस्ट फेमस कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ मेडिसिन वॉज हिज एक्सटेंसिव स्टडीज ऑन एंडोटॉक्सिन्स ऑफ द कॉलरा बैक्टीरिया विच लेड टू अ ग्रेट लीप इन आवर अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ कॉलरा एंड रिलेटेड डायरियल डिजीजेज. ही डिजाइंड सेवरल नॉवल एक्सपेरिमेंटल मेथड्स टू स्टडी द मैकेनिज्म एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ दिस पैथोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग कॉलरा. द डिस्कवरी ऑफ exotoxin promoted a new paradigm in research on cholera and brought him international recognition and acclamation.
और आज सुप्रसिद्ध साहित्यकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की जयंती है। उनके साहित्य जीवन की बात करें तो खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्यकार हरिऔध जी का सृजनकाल हिंदी के तीन युगों में विस्तृत है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावादी युग। इसलिए हिंदी कविता के विकास में हरिऔध जी की भूमिका नींव के पत्थर के समान है। प्रिय प्रवास की रचना संस्कृत वर्णवृत्त में करके जहां उन्होंने खड़ी बोली को पहला महाकाव्य दिया, वहीं आम हिंदुस्तानी बोलचाल में चोखे चौपदे तथा चुभते चौपदे रचकर मुहावरेदार भाषा को भी अपनाया। कहीं कहीं उसमें उर्दू फारसी के भी शब्द आ गए। जैसे उदाहरण लीजिए, नहीं मिलते आंखों वाले पड़ा अंधेरे से है पाला, कलेजा किसने कब थामा, देख छिलते दिल का छाला। जी हां, उनकी कविताओं में वियोग तथा वात्सल्य और प्रकृति का भी वर्णन मिलता है। और उनकी एक रचना की ये पंक्तियां आज भी जुबा पर है कि जो निकलकर बादलों की गोद से थी, अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, हाय क्यों घर छोड़कर मैं यूं बड़ी।
And the next personality we pay tribute to today is Ustad Sultan Khan on his birth anniversary today, who was an Indian sarangi player and classical vocalist belonging to Sikar Gharana. He was one of the founding members of the Indian fusion group Tabla Beat Science with Zakir Hussain and Bill Laswell. He was awarded the Padma Bhushan and also the Sangeet Natak Academy Award in 1992, and he started his career with All India Radio station Rajkot, and later he shifted to the Mumbai Radio.
प्रसिद्ध गीतकार हसरत जयपुरी की भी आज जयंती है। एक से बढ़कर एक गीत उन्होंने लिखे हैं। आपको पता है उनका लिखा पहला गीत जो रिकॉर्ड हुआ था वो कौन सी फिल्म का था और कौन सा गीत था? आप सुनिए ये गीत बरसात का। फिल्म बरसात के इस गीत के बाद उन्हें कामयाबी बहुत मिली और उसके बाद राज कपूर, हसरत जयपुरी और शंकर जयकिशन ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया। इनमें आवारा, श्री 420, चोरी चोरी, अनाड़ी, संगम फिल्में शामिल हैं। और जाते जाते एक और फिल्म का गीत आपको सुनाते हैं जो उन्होंने लिखा था। जी, हमारा कार्यक्रम सुनकर आपको कैसा असर हुआ ये आप हमें बता सकते हैं। बहरहाल, प्रियंका अरोड़ा और अनुजा कुमार को दीजिए अनुमति कार्यक्रम यही संपन्न करने की। नमस्कार।